एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो हम सबके साथ है हर पल, पर शायद हम सोचते नहीं उसके बारे में। जीपीएस। और हमारे पास है पॉल ई सरूजी की किताब जीपीएस। ये एमआईटी प्रेस एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है।
बिल्कुल। और देखिए, जीपीएस अब वो नहीं रहा जो पहले था, सिर्फ कार में रास्ता बताने वाला।
हाँ बिल्कुल,
ये तो हमारी जिंदगी का एक छुपा हुआ हिस्सा बन गया है, अदृश्य उपयोगिता है ना?
अदृश्य उपयोगिता सही शब्द है।
हाँ सोचिए जरा, बैंकिंग, मोबाइल नेटवर्क, सामान की डिलीवरी, अरे खेतों में ट्रैक्टर तक, सब में जीपीएस है।
कमाल है, और हम इसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना।
वही तो आज इसी पे बात करते हैं।
हाँ, समझते हैं कि कैसे सेना का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट और कैसे इसने सब कुछ बदल दिया, समाज, व्यापार, यहाँ तक कि टाइम और स्पेस की हमारी समझ। चलिए शुरू करते हैं।
हाँ तो पहले लेखक की बात, पॉल ई सरूजी, ये टेक्नोलॉजी के इतिहास के जाने माने एक्सपर्ट हैं और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम से जुड़े रहे हैं, क्यूरेटर एमेरिटस हैं वहाँ।
अच्छा, और उनकी एक्सपर्टीज भी तो बिल्कुल सही जगह है, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, मतलब जीपीएस के सारे पुर्जे।
एकदम, उनकी एक और किताब है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, काफी मशहूर है।
तो मतलब वो तकनीक को खूब समझते हैं, पर सिर्फ टेक जानना काफी होता है क्या?
नहीं बिल्कुल नहीं, और यही सरूजी की बात अलग हो जाती है। एक तो एक्सपर्टीज,
हाँ,
दूसरा स्मिथसोनियन में होने की वजह से उन्हें असली चीजें, दस्तावेज, लोगों तक पहुंच मिली।
अच्छा, ये बड़ी बात है, अंदर की कहानी पता चली होगी।
बिल्कुल। और तीसरी बात जो शायद सबसे अहम है, वो सिर्फ तकनीक नहीं देखते।
अच्छा, फिर क्या देखते हैं?
को कहानी जैसा बना देते हैं, आसान, दिलचस्प।
ये तो बहुत जरूरी है, वरना ऐसी किताबें कौन पढ़े।
सही कहा।
तो इस किताब का मतलब निचोड़ क्या है, क्या बताना चाहती है ये?
देखिए, ये किताब जीपीएस की जीवनी जैसी है, कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा,
सेना की जरूरत से लेकर
आज की इस ग्लोबल यूटिलिटी तक, जिसके बिना शायद काम ही ना चले।
और इसका मकसद क्या है, पढ़ने वाले को क्या मिलेगा?
मकसद है इस अदृश्य चीज को फिर से दिखाना कि भाई देखो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी इंजीनियरिंग समझो, वो बड़े फैसले जानो जिनसे ये हम तक पहुंचा, और वो सारे सिस्टम जो इस पे टिके हैं,
मतलब इसकी कद्र करना सीखें।
बिल्कुल, जिसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं।
तो फिर किताब का मेन आइडिया क्या है, सबसे बड़ी बात?
सबसे बड़ी बात तो यही कि जीपीएस सिर्फ नेविगेशन नहीं है, ये बिजली या इंटरनेट जैसा है।
अच्छा, मतलब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
एकदम, आधुनिक दुनिया का बुनियादी ढांचा, अदृश्य पर बेहद जरूरी।
और इसमें समय का रोल भी बहुत बड़ा है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोकेशन से ज्यादा टाइमिंग जरूरी है इसके लिए।
अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, यही किताब का दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क है।
क्या है वो?
कि जीपीएस की असली ताकत सिर्फ कहां, पोजीशन बताने में नहीं, बल्कि एकदम सटीक कब, टाइम बताने में है।
अच्छा, पूरी दुनिया में एक साथ?
हाँ, ग्लोबली सिंक्रनाइज टाइम, और यही लोकेशन और टाइम का कॉम्बिनेशन है जो आज सब कुछ चला रहा है, बैंकिंग, मोबाइल नेटवर्क, सब।
कमाल है। तो ये किताब इसी सवाल का जवाब देती है कि कैसे सेना की चीज
आम लोगों के लिए मुफ्त की सेवा बन गई।
हाँ चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे खुलती है। किताब शुरू होती है इतिहास से। सरूजी कहते हैं जीपीएस कोई नई चीज नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक प्रॉब्लम का हल है।
हाँ, देशांतर की समस्या, लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम।
सही, समंदर में जहाज कहाँ है, पूरा पश्चिम में, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था।
मुश्किल ही नहीं, जानलेवा था। कितने जहाज खो गए, किताब याद दिलाती है। पहले तारे देखते थे, फिर जॉन हैरिसन जैसे लोग आए जिन्होंने सटीक घड़ियां बनाई, क्रोनोमीटर।
अच्छा, घड़ी से देशांतर कैसे?
क्योंकि अगर आपको अपने घर का सही समय पता हो और जहां आप हैं वहां सूरज कब सिर पर है ये पता हो, तो आप देशांतर निकाल सकते हैं।
अरे वाह,
यही वो कनेक्शन बनता है, कहां जानने के लिए कब जानना जरूरी है, सटीक टाइम, सटीक लोकेशन।
और जीपीएस से पहले भी तो कुछ सिस्टम्स थे, लोरैन, ट्रांजिट।
बिल्कुल, किताब उनका जिक्र करती है, लोरैन रेडियो वाला था, ट्रांजिट पहला सैटेलाइट वाला, 1960s में नेवी का।
पर उतने सटीक नहीं थे।
नहीं, जीपीएस जितने नहीं, पर हाँ उन्होंने रास्ता दिखाया, जीपीएस के पुरखे कह सकते हैं।
फिर आता है कोल्ड वॉर का दौर, लगता है उसके बिना ये सब होता ही नहीं।
सरूजी का तो यही मानना है, इतना पैसा, इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी, शांति के समय कौन लगाता। असली ड्राइव था 1957 में स्पूतनिक का लॉन्च, और फिर अमेरिकी नेवी को अपनी परमाणु पनडुब्बियों के लिए सटीक लोकेशन चाहिए थी, कहीं से भी मिसाइल दागने के लिए।
अच्छा, तो ये सर्वाइवल का सवाल था।
बिल्कुल, पर सब एक ही दिशा में नहीं सोच रहे थे।
मतलब
अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे।
हाँ, यही तो मजेदार है। 60 के दशक में नेवी का अपना प्रोजेक्ट था टिमेशन, फोकस था सैटेलाइट पर सटीक परमाणु घड़ियों पर।
घड़ियों पर।
और एयरफोर्स का था प्रोजेक्ट 621B, वो अलग सिग्नल डिजाइन सोच रहे थे।
तो ये दोनों मिले कैसे, जीपीएस कैसे बना?
वो हुआ 1973 के लेबर डे वीकेंड पर, पेंटागन में एक बड़ी मीटिंग हुई।
अच्छा।
वहीं नेवी और एयरफोर्स के आइडियाज को मिलाया गया और बना नेवस्टार जीपीएस।
नेवस्टार जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एकदम। और इसके पीछे मुख्य आदमी थे एयरफोर्स के कर्नल ब्रैडफोर्ड पॉकिंसन, जीपीएस के पिता भी कहते हैं उन्हें कई लोग।
अच्छा।
वहीं तय हुआ कि सैटेलाइट कैसे उड़ेंगे, कितने होंगे। शुरू में 24 सोचे गए, सिग्नल कैसा होगा, सीडीए में टेक्नोलॉजी, ये सब।
ठीक है, तो सिस्टम का नक्शा बन गया, पर ये काम कैसे करता है? ये लोकेशन पता कैसे चलती है? जादू लगता है?
जादू नहीं, पर विज्ञान का कमाल है। सेरुजी दो प्रिंसिपल से समझाते हैं। पहला है ट्राइलेट्रेशन।
ट्राइलेट्रेशन ये क्या होता है?
आसान है। मान लीजिए आप कहीं खो गए, आप तीन लोगों से पूछते हैं कि फलाना लैंडमार्क कितनी दूर है।
हाँ।
एक कहता है 5 किलोमीटर, दूसरा 7, तीसरा 6। अब अगर आप नक्शे पर इन दूरियों के 3 गोले खींचे तो वो जहां कटेंगे वही आपकी जगह है।
अच्छा, तो जीपीएस रिसीवर भी यही करता है, सैटेलाइट से दूरी नापता है।
बिल्कुल, आपका फोन कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। हर सिग्नल में है कि सैटेलाइट कहाँ है और सिग्नल कब भेजा। सिग्नल को आप तक आने में लगे टाइम से दूरी पता चलती है। 4 सैटेलाइट से दूरी मिली तो आपकी 3D लोकेशन पक्की। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड।
ये समझ आया, पर आपने वो समय वाली बात पर बहुत जोर दिया था, वो कहाँ है इसमें?
हाँ, अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी प्रिंसिपल, सटीक समय और सापेक्षता, रिलेटिविटी। यही जीपीएस की जान है।
सापेक्षता, आइंस्टाइन वाली?
जी हाँ, आइंस्टाइन वाली। पूरा सिस्टम इस पर टिका है कि हर सैटेलाइट की परमाणु घड़ी एकदम सटीक हो और सब आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो।
कितनी सटीकता चाहिए?
1 सेकंड के 90वें हिस्से तक, नैनो सेकंड लेवल की।
अरे बाप रे।
और आइंस्टाइन का क्या रोल है इसमें?
उनके बिना जीपीएस चले ही नहीं सकता। उनकी रिलेटिविटी की 2 थ्योरी लगती हैं। पहली स्पेशल रिलेटिविटी।
हाँ।
वो कहती हैं कि तेज चीजों के लिए टाइम धीमा हो जाता है। सैटेलाइट 14,000 किलोमीटर घंटे से घूम रहे हैं
तो उनकी घड़ियां धीमी चलती हैं।
हाँ, जमीन के मुकाबले रोज 7 माइक्रोसेकंड धीमी।
अच्छा।
और दूसरी?
दूसरी जनरल रिलेटिविटी। वो कहती है कि जहां ग्रेविटी कमजोर हो वहां टाइम तेज चलता है। सैटेलाइट्स बहुत ऊपर हैं, ग्रेविटी कम है
तो वहां टाइम तेज चलता है।
हाँ, जमीन के मुकाबले रोज 45 माइक्रोसेकंड तेज।
तो एक तरफ 7 धीमा, दूसरी तरफ 45 तेज। नेट असर क्या हुआ?
नेट असर हुआ कि सैटेलाइट्स की घड़ियां रोज लगभग 38 माइक्रोसेकंड, 45-7 तेज हो जाती हैं।
38 माइक्रोसेकंड, ये तो बहुत ही कम है। क्या फर्क पड़ता है इससे?
फर्क जमीन आसमान का। सिरुसी बताते हैं कि अगर सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ये 38 माइक्रोसेकंड रोज ठीक ना करें
तो
लोकेशन में रोज 10 किलोमीटर की गलती जुड़ती जाएगी।
क्या, 10 किलोमीटर रोज?
हाँ, सिस्टम मिनटों में बेकार हो जाएगा। मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी के बिना जीपीएस कबाड़ है।
ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है वाकई,
है ना?
अच्छा, चलिए विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किताब कहती है कि जीपीएस सिर्फ सेना के लिए नहीं रहा, आम लोगों तक पहुंचा। ये कैसे हुआ? जरूर कोई बड़े फैसले हुए होंगे।
हाँ, अब ये कहानी का एक और जरूरी मोड़ है। 2 घटनाएं बहुत अहम थीं। पहली 1983 में कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 का हादसा।
हाँ, वो दुखद घटना।
वो जहाज रास्ता भटक कर सोवियत एयर स्पेस में चला गया था, उसे मार गिराया। उसके बाद प्रेसिडेंट रीगन ने ऐलान किया कि जीपीएस जब चालू होगा तो आम लोगों के लिए मुफ्त होगा।
ये बहुत बड़ा कदम था, पर शुरू में सटीकता कम रखी थी ना, वो सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी।
बिल्कुल, ऐसे सेना ने जानबूझकर सिविलियन सिग्नल में थोड़ी गड़बड़ी रखी थी। सटीकता करीब 100 मीटर थी, मिलिट्री के लिए 10 मीटर।
अच्छा, ताकि दुश्मन फायदा ना उठा सके।
हाँ, पर इससे सिविलियन यूज और इनोवेशन में रुकावट आ रही थी।
तो ये रुकावट कब हटी?
1 मई 2000 को प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऐसे को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
अच्छा।
सेरुजी इसे जीपीएस इंडस्ट्री के लिए बिग बैंग कहते हैं। रातों रात सटीकता 10 गुना बढ़ गई, 100 मीटर से 10 मीटर।
और फिर तो नए नए इस्तेमाल की बाढ़ आ गई होगी।
बिल्कुल, अगला चैप्टर इसी क्रांति के बारे में है। ये सिर्फ कार नेविगेशन नहीं है, जीपीएस हमारी जिंदगी में रच बस गया है।
जैसे कि
कुछ उदाहरण?
अरे अनगिनत, लॉजिस्टिक्स देखिए, अमेज़न फ्लिपकार्ट के पैकेट कैसे टाइम पर आते हैं, ट्रक कहाँ है, किस रास्ते से जाए, सब जीपीएस। खेती, प्रिसिजन फार्मिंग, जीपीएस वाले ट्रैक्टर खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, सही मात्रा में खाद दवा डालते हैं।
भारत में भी ये हो रहा है अब?
हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर बैंकिंग और मोबाइल, शेयर बाजार में सौदों का टाइम स्टैम्प जीपीएस से आता है।
अच्छा।
मोबाइल टावर आपस में सिंक करने के लिए जीपीएस टाइम यूज करते हैं, तभी तो कॉल ड्रॉप नहीं होती।
कमाल है।
फिर विज्ञान और सुरक्षा, वैज्ञानिक इससे धरती की प्लेटों की मूवमेंट नापते हैं, भूकंप की भविष्यवाणी, मौसम का हाल, इमरजेंसी कॉल 112 पर लोकेशन।
और हमारी रोज की जिंदगी?
ओला, उबर, जोमैटो, गूगल मैप्स, डेटिंग एप्स तक, सोशल मीडिया पर चेक इन, सब जीपीएस है।
वाकई लगता है इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या सब अच्छा ही है? कोई कमजोरी, कोई खतरा? किताब कुछ कहती है इस बारे में?
हाँ, किताब सिर्फ तारीफ नहीं, चेतावनी भी देती है। आखिरी हिस्सा इसी पर है। जीपीएस सिग्नल बहुत कमजोर होता है।
कमजोर मतलब?
मतलब सूरज में बड़े तूफान, सोलर फ्लेयर आए, या कोई जानबूझकर सिग्नल जाम कर दे, जामिंग या नकली सिग्नल भेज दे, स्पूफिंग, तो ये गड़बड़ा सकता है।
अरे मतलब हम एक बहुत नाजुक चीज पर इतने निर्भर हैं?
बिल्कुल, यही है सिस्टमिक रिस्क, जब सब कुछ एक ही चीज पर टिका हो।
ये तो चिंता की बात है।
हाँ, इसीलिए अब दुनिया में दूसरे सिस्टम भी बन रहे हैं। रूस का ग्लोनास, चीन का बेडू, यूरोप का गैलीलियो।
अच्छा, ताकि एक पर निर्भरता न रहे।
हाँ, इसे GNSS कहते हैं। उम्मीद है इससे सिस्टम ज्यादा मजबूत बनेगा।
तो कुल मिलाकर सेना के लिए बनी चीज पॉलिसी से आम हुई, आइंस्टाइन ने मुमकिन बनाया, और अब जिंदगी का अदृश्य हिस्सा है जिस पर हम बहुत निर्भर भी हैं। क्या यही है सार?
हाँ, काफी हद तक। अगर हम मेनकिंस देखें तो यही बातें हैं। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, सेना की चीज, आम लोगों का भला, पॉलिसी जरूरी। अदृश्य उपयोगिता, बिजली पानी जैसा, जाए तो पता चले।
सही।
समय की अहमियत, लोकेशन से ज्यादा सटीक टाइम देना शायद ज्यादा बड़ा काम है।
हाँ, फिनेंस, कम्युनिकेशन के लिए।
विज्ञान का काम, आइंस्टीन सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल जरूरत है।
बिल्कुल।
ओपन एक्सेस की ताकत, ऐसे हटाने से इनोवेशन बढ़ा। निर्भरता और नाजुकता, एक ही सिस्टम पर टिके रहना खतरनाक है।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी होंगी जो याद रह जाती हैं, कुछ खास विचार?
हाँ हैं, बिल्कुल। जैसे एक है कि जीपीएस बनाने वाले हथियार पहुंचाना चाहते थे, दुनिया इसे समय पहुंचा रही है, मतलब कैसे बदल गया।
सही।
दूसरा, आइंस्टीन के बिना जीपीएस मिनटों में फेल, रोज 10 किलोमीटर की गलती। तीसरा, सबके लिए मुफ्त और सटीक जीपीएस देने के फैसले ने शायद किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा आर्थिक वैल्यू पैदा की, पॉलिसी का असर।
ये बात पति की है।
और एक थोड़ा सोचने वाला, जीपीएस ने खोने का डर तो खत्म कर दिया, पर शायद रास्ता याद रखने की हमारी दिमागी क्षमता भी बदल दी है।
हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं, अब बिना मैप के कहीं जाना मुश्किल लगता है।
तो ये सब जानकारी हमारे किस काम की? हम रोज की जिंदगी में क्या सीखें इससे?
पहली चीज तो यही कि अपने आसपास के इन अदृश्य टेक्नोलॉजी को पहचाने, उनकी कद्र करें।
हाँ, और ये भी समझें कि सरकारी पैसा साइंटिफिक रिसर्च कैसे हम तक पहुंचता है।
बिल्कुल। और अपनी निर्भरता को समझें, सोचें कि अगर जीपीएस बंद हो जाए तो क्या कोई बैकअप है।
हाँ, ये सोचना जरूरी है, पर्सनली भी, बिजनेस के लिए भी।
और हाँ, अगली बार पिज्जा टाइम पर आए तो आइंस्टाइन को थैंक यू बोल सकते हैं। सही है, विज्ञान को जिंदगी से जोड़ने का अच्छा तरीका है। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे सरकारी रिसर्च से प्राइवेट इनोवेशन निकलता है।
निश्चित रूप से AI, ग्रीन एनर्जी की बहसों में ये एक अच्छा उदाहरण है। और जो लोग लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, खेती जैसे फील्ड में हैं, उनके लिए तो ये जानना और भी जरूरी है कि उनका टूल कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं क्या हैं।
हाँ, शायद वो और बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सबसे सफल तकनीक अक्सर अदृश्य हो जाती है। ये किताब उसे फिर से सामने लाती है, याद दिलाती है कि हमारी दुनिया इन सिग्नलों पर चल रही है।
और मेरे लिए ये कि तकनीक सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, पॉलिसी भी है। जीपीएस का खुलना एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। और हाँ, वो विरोधाभास, हमारी ताकत ही हमारी कमजोरी है, जीपीएस पर निर्भरता।
ये वाकई एक जरूरी बात है।
और यही मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सबके लिए, इस निर्भरता को देखते हुए हम भविष्य के लिए ज्यादा मजबूती, ज्यादा रेजिलियंस कैसे ला सकते हैं? कैसे पक्का करें कि एक सिस्टम फेल हो तो सब ठप ना हो?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।